शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाप किस समय आते हैं। बाबा ने कहा कि बाप किस समय आते हैं, बाबा ने कहा कि जब सब आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाती हैं और बाकी थोड़ी सी रह जाती हैं, तब बाबा आते हैं और आकर के पतित से पावन और तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं। फिर बाबा ने ड्रामा की बात कही कि ड्रामा जो बना हुआ है ये बहुत अच्छा है और इस ड्रामा को बाहर के लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। दुनिया में जो ड्रामा बनाते हैं उसके पास्ट और प्रेजेंट को जानते हैं, फ्यूचर में क्या होगा वो कुछ नहीं जानते। लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों को इस ड्रामा के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान भी अभी ही मिलता है, फ्यूचर में क्या होता है वो भी तुम बच्चे जानते हो। और ये ड्रामा इतना बड़ा है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा ने योग के ऊपर ध्यान खिंचवाया कि जो बच्चे योग में होंगे उन्हें माया कभी हरा नहीं सकती है, योग ही हर प्रकार की परिस्थिति से बचने की जैसे कि ढाल है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या बनना है, देही अभिमानी बनना है। साथ साथ बाबा ने भविष्य दुनिया के बारे में भी बताया कि भविष्य दुनिया में ऐसा नहीं है कि वहाँ खुदाई करेंगे, वहाँ तो नेचुरली खानियाँ होंगी, आपके महल जो होंगे सोने के महल होंगे, यहाँ तो फिर द्वापर से शुरू होता है, तब थोड़ी खुदाई करते हैं कोई ना कोई चीज निकलती, और अभी भी कुछ ना कुछ खुदाई करते ही रहते हैं, पुरानी चीजें निकालते ही रहते हैं। बाबा ने कहा वहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं होगा। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 22 जनवरी 2025। आज की तारीख 22 जनवरी 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, इसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। मुझे बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, इसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। आज का प्रश्न है किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी। तो इसका किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी, इसका उत्तर है पवित्रता और योग के कशिश के आधार पर। पवित्रता होगी तो योग लगेगा और योग के लिए पवित्रता जरूर चाहिए ना, पवित्रता ही फाउंडेशन है। तो बाबा कहते हैं पवित्रता और योग के कशिश के आधार पर इसी से ही तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे, देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे, जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। क्योंकि साकर बाबा के टाइम पर तो बहुत थोड़े आते थे और बाबा को नहीं बच्चों को संकल्प चलता था, बाबा ये आते ही नहीं। लेकिन बाबा ने कहा कि आगे चल करके ढेर आएंगे और अभी हम देखते कितने आते हैं, कितने आते ही जाते हैं क्योंकि उनको भी अच्छा भी लगता है। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे, देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाए, क्योंकि पहले तो नए नए थे, अभी जैसे जैसे योग का अभ्यास करते हैं तो शक्ति भी बढ़ती है, कशिश भी होती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, बुद्धि में है ना, जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते। अब नई नई आत्माएं आएंगी, लास्ट में उनके द्वारा फिर से आगे का कार्य शुरू होता है, वो भी थोड़े टाइम के लिए आते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आता है। बाबा कब आते हैं, पूरे ड्रामा के लास्ट में आते हैं। तो बाबा कहते हैं दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, अभी तक भी वृद्धि होती रहती है। ये भी जानती हूँ कि बाप को कोई नहीं जानते हैं। तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को भी कैसे जानेंगे, ना बाबा को जानते हैं। अगर बाबा को ही नहीं जानते हैं तो रचना के आदि मध्य अंत को भी कैसे जान सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी जानते हूँ कि बाप को कोई भी जानते नहीं है, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे। ये बेहद का ड्रामा है ना, तो ड्रामा के एक्ट्रेस को मालूम होना चाहिए। कोई भी फिल्म में पार्ट बजाते हैं या ड्रामा करते हो, शुरू से लेकर अंत तक क्या है तो वो पूरा ज्ञान लेते हैं, समझते हैं, तब तो पार्ट प्ले करते हैं। अब उनको तो पता है, लेकिन ये ड्रामा में किसको पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो ड्रामा के एक्ट्रेस को मालूम होना चाहिए। जैसे हज के एक्ट्रेस को मालूम होता है कि फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ, पता होता है कि इसमें कौन क्या है, कौन हीरो है, किसका छोटा पार्ट है, किसका बड़ा है, सारा पता होता है। लेकिन बाबा कहते ये ड्रामा ऐसा जो किसको पता ही नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जैसे हद के एक्ट्रेस को मालूम होता है कि फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ है, जो चीज पास्ट हो जाती है उनका फिर छोटा ड्रामा बनाते, जो पूर्व में बीत चुका, हर जैसे कि रामायण बनाया, महाभारत बनाया, कई का जो हो चुका उसका ड्रामा बनाते हैं। तो बाबा कहते जो पास्ट हो जाता है उसका फिर छोटा ड्रामा बनाते, फ्यूचर का तो कोई बना न सके। पास जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बना करके ड्रामा बनाते हैं, सभी को वही दिखाते हैं, फ्यूचर को तो कुछ भी जानते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो बाप आया हुआ है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे। हमें ड्रामा के अंदर कौन सी नॉलेज है कि बाबा आया हुआ है, स्थापना हो रही है और हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं कि देवी देवता पद पाने के लिए। ये देवता इतना ऊंच कैसे बने ये भी किसको पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है, अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं कि सब धर्म हमारे लिए एक है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों को बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट किया है, और देशों में तो नहीं करते ना, पर क्योंकि देवी देवताओं के संस्कार है। फिर भी बाबा कहते हैं अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे, शुरू का कल्प वृक्ष का चित्र और लक्ष्मी नारायण का और त्रिमूर्ति का चित्र, गोला, ये सारे चित्र जो है ना दिव्य दृष्टि से बाबा ने बनवाए थे। बाबा ने बनवाए, डॉक्टर संदेशी को भेजते थे, फिर बाबा उसमें करेक्शन करते थे, फिर वो आकर के बताते थे। बनवाने वाले तो हमारे दादा विश्व किशोर थे, बनाते तो वो थे लेकिन बना करके बाबा को दिखाते थे। बाबा फिर संदेशी के माध्यम से श्री बाबा के पास भेजते थे, फिर ये दिव्य दृष्टि से चित्र बने हुए। ऐसा चित्र दुनिया में तो कोई बना नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने ऐसे चित्र बनवाए ना। तो बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे, कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते। बाद में तो बाकी चित्र जो बनने लगे, वो बच्चों की बुद्धि भी तो अच्छी है ना, तो उनसे भी बने चित्र बनाए। बाद में तो कोई फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते। बच्चों को ये भी समझाया है, ये ऊपर लिखो, पाठधारी एक्ट्रेस तुम है परंतु क्रिएटर डायरेक्टर आदि को कोई भी जानते नहीं। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पुरानी से नई दुनिया बननी है, ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कितनी अच्छी है, कैसी अच्छी युक्ति है। बाबा आते हैं, बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं और यही ब्राह्मण जाकर के देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो ड्रामा के अंदर ये युक्ति कितनी अच्छी है। तो बाबा कहते हैं, युक्ति देखो कैसी अच्छी है, भल ये अनादि बना बनाया हुआ ड्रामा है, परंतु बना बहुत अच्छा है। अब किसी को भी संकल्प चलता है, ड्रामा ऐसा क्यों बना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा चेंज करना चाहिए। बाबा कहते भल अनादि है, लेकिन ड्रामा इतना अच्छा है, इसको बदली नहीं कर सकते, बहुत अच्छा ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं, ये परंतु बना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं, तुमको हम गुहे गुहे बातें नित्य सुनाता हूँ, जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास की सारी हिस्ट्री मालूम होगी, फिर सतयुग में जाएंगे तो पास की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास का किसको सुनाएंगे, सचिव में तो क्या करेंगे, पास्ट है क्या, कौन सुनेगा और किसको सुनाएंगे। तो बाबा कहते पास्ट का किसको सुनाएंगे, ये लक्ष्मी नारायण को पास्ट का बिल्कुल नहीं जानते, ये लक्ष्मी नारायण भी पास्ट को बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है, कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाए, फ्यूचर का है हमारा, कैसे महल बनाएंगे, कैसे हमारी राजधानी होगी, विनाश तो देख ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में तो पांच प्रेजेंट फ्यूचर सब है, कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे, बनेंगे तो जरूर ना, स्वर्ग की सीन सीनरी ही अलग है। जैसे जैसे पार्ट बजाते जाएंगे तो मालूम पड़ता जाएगा। फिर बाबा ने कहा, देखो सतयुग के सीन तो याद आते ही जाएंगे, लेकिन अभी क्या हाल है, इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल, नाहक नुकसान होता रहता है। खूने नाहक मीन्स अच्छा, किसी ने कुछ किया नहीं, अर्थ क्विक हो गई तो कितने लोग मर जाते हैं, तो ऐसे ही नाहक कहते ना, अचानक हो गया, नाहक मीन्स कोई उसको मन न चेत अचानक हो जाता है, नाहक होता रहता है, अर्थ क्विक होती है, कितना नुकसान होता है, बम्स आदि फेंकते हैं, ये भी तो नाहक है ना। अब दो देशों की आपस में दुश्मनी है, एक देश के लोगों के ऊपर बम डाला, अब उसकी उसका तो कोई दोष ही नहीं है, है आप देश की दुश्मनी और देश के लोग ही कितने मर जाते हैं। तो बाबा कहते नाहक हुआ ना, कोई कुछ करता थोड़ी है। अब ये तो कई जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है, वो तो ड्रामा को नहीं जानते, लेकिन है तो अचानक ना। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल, नाहक नुकसान होता रहता है, अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है, बॉम्ब फेंकते हैं, ये भी नाहक है ना, बॉम्ब फेंकते हैं तो ये भी नाहक है ना, कोई कुछ करता थोड़ी है। विशाल बुद्धि जो है वह समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था, जरूर मारा मारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते। दुनिया में कई प्रकार के खेल बनाते रहते हैं, क्या क्या होना है, कैसे होना है। तो बाबा कहते वो तो खेल बनाते हैं, लेकिन ये रियलिटी तो तुम बच्चे ही जानते हो, ऐसा खेल भी बनाते हैं, ये तो समझ भी सकते हैं। कोई समय किसकी बुद्धि में, बाबा बता रहे हैं देखो आजकल तो कितनी भविष्यवाणी होती रहती है, आगे चल के ये होगा वो होगा, कितना वो बताते रहते। बाबा ने तो ये सब बातें पहले बता दी थी। ऐसा कभी कोई की बुद्धि में टच होता है, तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो, तुम जानते हो अभी नई दुनिया में चलना जरूर है, जाना भी है, लेकिन एक बाबा कहते कई संकल्प में होता है भी जाएंगे जाएंगे, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहां आ जाते। कईयों ने ब्रह्मा बाबा से ज्ञान लिया, ब्रह्मा बाबा से मिले और उसके बाद है ब्राह्मणों से नॉलेज लिया, नॉलेज को धारण करते हैं तो बाबा कहते वो सत्युग में आ जाएंगे। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहां आ जाते हैं। रहते तो अपने गृहस्थ में है ना, बहुतों को तो जान भी ना सको। बाबा के इतने बच्चे हैं अभी भी ऐसा सेंटर्स पर इतने आते हैं तो देखेंगे कहेंगे भी अब कौन जानता है, पुराने जो थोड़े थे तब तो एक दो को जानते थे, अब संख्या बढ़ती जाती है तो कहाँ कहाँ से आते रहते हैं। इतना देख के खुशी होती है बाबा के बच्चे हैं हमारे ब्राह्मण परिवार के हैं वो खुशी होती है, लेकिन कौन कहाँ रहते है क्या करते वो तो नॉलेज नहीं रहती ना। तो बाबा कहते हैं रहते तो अपने घर गृहस्थ में है, बहुतों को भी तो जान न सके, सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़ी रह सकते हैं। शुरू में बाबा के टाइम पर थोड़े थोड़े सेंटर्स पर आते थे ना तो बाबा के पास आते थे, बाबा से मिलते थे, बाबा हर एक को पहचान लेता था, याद रहता। अब सेंटर्स पर बढ़ते जाते बढ़ते रहते तो सब थोड़ी याद रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इतने सब याद थोड़ी रह सकते हैं, कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे, एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। अभी भी करते ना बताते कितने हैं 10 लाख फैमिली इतने, लेकिन उसमें बिल्कुल एक्यूरेट कितना वो नहीं बता सकते। शुरू में तो बाबा के टाइम पर क्या होता था, हर सेंटर पर एक रजिस्टर रखा होता था, उसमें सबकी हाजिरी भरते थे, पता होता था यहाँ 10 आते 20 आते, वो उसकी गिनती करना बड़ा सहज भी था। उसके बाद काफी टाइम बाद तक चलता रहा कि एक्यूरेट उसको गिनती भी करते थे, अब तो बढ़ते जाते। तो बाबा कहते एक्यूरेट तो हिसाब नहीं निकाल सकते ना, अनगिनत कहेंगे, एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़ी पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितने, प्रजा है अप्रोक्सीमेट बताएंगे लेकिन कितनी वो तो नहीं बता सकते ना। राजा को मालूम थोड़ी पड़ता है कि एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। सब भाइयों आत्माओं को सब भल आदम शुमारी आदि निकालते हैं। तो बाबा बता रहे हैं राजा को मालूम थोड़ी पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है, भल आदम शुमारी आदि निकालते हैं फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट हो और वह भी स्टूडेंट है, सब भाइयों आत्माओं को याद करना है एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है बाबा बाबा को, छोटे छोटे बच्चे आते ना उनको कहो बाबा कहाँ है, सीधा बोलेंगे बाबा वहाँ है, आत्मा कहाँ है, वो फटाफट बताएंगे आत्मा। तो बच्चे को जो सिखलाते वो याद हो जाता है। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है बाबा बाबा कहो, ये भी तुम जानते हो आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे, जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाए। बाबा ने कहा ना इतना अभ्यास करते रहते तो योग का भी प्रभाव पड़ेगा, तो जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है, जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी, औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना, बस साकार बाबा में योग की इतनी अट्रैक्शन थी, बाबा को देखते थे बस सब कुछ भूल जाते थे, बाबा को देखा सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता था। कई बच्चे आते थे कहते आज हम बाबा से मिलने जा रहे हैं, बाबा से जाकर के हम ये प्रश्न पूछेंगे, और बाबा के पास आए बाबा को देखा सब कुछ भूल जाते थे। और बाबा को मालूम पड़ता था कि ये बच्चा कई प्रश्न लेके आया है, तो बाबा पूछते बच्चे कोई पूछना है, कहते नहीं। बाबा कहते बच्चे सोचो कुछ पूछना, नहीं बाबा कुछ नहीं। फिर बाबा कहते अच्छा कुछ याद है, नहीं बाबा उनको कुछ भी याद नहीं है। इतना पावरफुल योग बाबा का, इतनी पावरफुल अवस्था कि देखने वाले को भी अनुभूति और सब बातों से न्यारे हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी, औरों को भी खींचेंगे। बाप भी तो खींचते हैं ना, बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, उसके लिए युक्तियां भी रची जाती हैं। गीता का भगवान कौन, साकार में बाबा को बहुत रहता था कि देखो एक छोटी सी ही बहुत बड़ी भूल के कारण क्या हालत हो गई है। तो गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, परंतु वह तो साकार रूप में है ना। निराकार बाप कहते हैं माम एकम याद करो, इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। शिव शिव में प्रदर्शनी करते थे तो ये टॉपिक जरूर रखते, कोई भी आता था उसे लिखवाते थे, एक प्रश्नावली बनाए हुए थे गीता का भगवान कौन है। शुरू में कई बहस भी करते थे लेकिन बाद में समझाने के बाद वो सब लिख करके जाते थे। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो, बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। बाबा ने कहा जैसे कोई पेड़ हो जाता है आंधी तूफान भी आता है, पत्ते गिरते भी रहते हैं नए आते भी रहते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे, विजय पाली फिर पुरुषार्थ ना हो रहेगा ना माया रहेगी। संपन्न बन गए ना पुरुषार्थ की जरूरत है ना माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं, जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। ये राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी, फिर हम हीरे जवाहरात कहाँ से लाएंगे। अब बाबा पूछते बच्चों को निश्चय है ना, कई बार बच्चे बाबा को कहते थे बच्चे बाबा हम सचिव में जाएंगे हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे हम कहाँ से लाएंगे। बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि वो पूछेंगे नहीं, वहां तो ऑटोमेटिकली सब कुछ है। तो बाबा कहते बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी, पर हम फिर हम हीरे जवाहरात कहाँ से लाएंगे, खानियां सब कहाँ से आएंगी, ये सब थे तो सही ना, इसमें मुझने की तो बात ही नहीं है। अब सारा छोटा ही विश्व होगा, सारा विश्व एक छोटा सा होगा, सारे विश्व के अंदर इतने हीरे जवाहरात कहाँ जाएंगे, वहां पर ही मिलेंगे ना, खानियां भी वहां होंगी। तो बाबा कहते इसमें मुझने की कोई बात ही नहीं है, इसमें मुझने की तो बात ही नहीं है, जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे, स्वर्ग बनना तो जरूर है। तो बाबा क्या कहते हैं, जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे, स्वर्ग बनना तो जरूर है। जो अच्छी रीच पढ़ते हैं उनको निश्चय रहेगा किस बात का, कि हम भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनूंगा, हीरे जवाहरातों के महल होंगे, सचिव में हम जाएंगे हम क्या बनेंगे, वो नशा रहेगा कि मैं जाकर के रॉयल फैमिली में जाऊंगा, प्रिंस प्रिंसेस बनूंगा, वहां हीरे जवाहरातों के हमारे महल होंगे, ये निश्चय है। तो बाबा कहते हैं ये निश्चय भी है उनको निश्चय रहेगा, और ये निश्चय भी है किसको रहेगा, सर्विस एबल बच्चों को, नहीं तो साधारण पुरुषार्थ वालों को थोड़ी रहेगा। तो बाबा कहते सचिव में हमारे महल होंगे, हीरे जवाहरातों के महलों में होंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ये निश्चय किसको होगा। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको निश्चय रहेगा, हम जाकर के भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनूंगा, हीरे जवाहरातों के महल होंगे, ये निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। कम पद पाने वाले होंगे तो उनको कभी भी ऐसे ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे, जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना, बाकी दास दासियां तो तैयार मिलेंगे, उसके लिए तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते प्रिंस प्रिंसेस बनना है, महलों में जाना, उसके लिए पुरुषार्थ करो, दास दासियां तो आप ही मिल जाएंगे, वो तो तैयार मिल ही जाएंगे, नहीं पुरुषार्थ करेंगे तो क्या पद होगा, दास दासी बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं दास दासियां तो तैयार मिलेंगे, सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन सर्विस करने वाले हैं, हम तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। तो देखो दोनों बातें, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको पता हम जाके क्या बनेंगे, और दूसरे बच्चे भी समझते हैं कि ये बहुत अच्छी सर्विस करता है ऊंच पद पाएगा, हम नहीं करते हैं तुम्हारा पद कम हो जाएगा, तो वहां जाएंगे तो क्या बनेंगे, हम तो पढ़े हुए के आगे भरे ढोएंगे। जैसे ये बाबा हैं, बाबा को भी ख्यालात रहती है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बच्चे मिसल है। देखो बाबा को ध्यान में रहता था ना कि मैं जाकर के श्री कृष्ण बनूंगा, तो बाबा भी क्या करता था, उसकी एक्टिविटी भी कभी कभी बाबा की बच्चों जैसी होती, बच्चे बनते हैं कैसे वो चलते हैं करते हैं, तो बाबा वो एक्टिविटी सबके सामने नहीं, लेकिन बाबा का वो स्वरूप होता था कि कैसे बच्चा बनेंगे, और अभी मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो बाबा के सामने सारा नक्शा एकदम क्लियर होता था, फिर उसके लिए मुझे क्या करना है वो बाबा उसका पुरुषार्थ भी करते थे। तो बाबा कहते हैं बाबा की तो एक जैसे ही बाबा हैं, बाबा को ख्यालात रहती है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। बाबा को तो एक ही एक्ट है, शिव बाबा को एक एक्ट है, ब्रह्मा बाबा को कई प्रकार की एक्ट है, बाप की पकड़ना है, पालना भी करनी है, बच्चों को संभालना भी है, अपना भविष्य भी साथ में देखना, लेकिन शिव बाबा की एक्ट एक है, शिव बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना है, सिखलाना है, विजय माला का दाना बनना है, तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए। शिव बाबा की एक्टिविटी एक है, बच्चों को पढ़ाना है, सिखलाना। और ब्रह्मा बाबा की एक्टिविटी तो कितनी ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना पड़े तब ही ऊंच बनेंगे। ये तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो। बाबा कहते बाबा जो सुना रहे हैं खुद ही जज करो। बाबा क्या सुना रहे, एक्यूरेट सुना रहे ना, खुद ही समझना चाहिए। तो बाबा कहते बाप जो सुनाते हैं उस पर जज करो, आगे चलकर और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा, नजदीक आते रहेंगे तो याद रहेगी। 5000 वर्ष हुए हैं हम अपनी राजधानी से लौटे हैं। बाबा कहते ये भी याद रहेगा 5000 वर्ष पहले थे हम अपनी राजधानी में रहते थे, फिर 5000 वर्ष हुए अभी लौटे हैं, अब फिर हमको वापस जाना है। 5000 वर्ष हुए हैं अपनी राजधानी से लौटे हैं, 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। जैसे वास्को डी गामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्कर लगाया। वास्को डी गामा की हिस्ट्री में बताते हैं ना क्या था, वो आया था निकला था भारत के लिए और उसका रास्ता भटक गया, भटकते भटकते पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाते जाके अमेरिका में पहुंचा और अमेरिका की खोज हो गई। तो बाबा कहते हैं जैसे वास्को डी गामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्कर लगाया, तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्कर लगाया। अंतर वो तो केवल निकला एक जगह के लिए, कहाँ कहाँ पहुंच गया। बाबा के जो तुम बच्चों ने इस वर्ल्ड का 84 का चक्कर लगाया, वो तो वास्को डी गामा एक गया ना, ये भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। डायनेस्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं, फंक तो नहीं हो जाते, कहां बिगड़ते तो नहीं है। 3 बातें, देह अभिमान होगा तो कोई ना कोई बात में मूंछ जाएंगे या एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं, दूसरा फंक तो नहीं हो जाते, कहां बिगड़ते तो नहीं है। देह अभिमान से सब होता है, फंक भी हो जाएंगे, बिगड़ते भी रहेंगे, लड़ते भी रहेंगे और फिर कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेगी। कौन माया क्या चमाट, उनको मारती है ना जो योग बल में नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बल ही ढाल है, योग बल से किसकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो आकर के आर्ग्यू करे या वो करे। तो बाबा कहते योग बल ही ढाल है, कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है, देही अभिमानी को कोई चोट कोई मार न सके। नहीं तो क्या होता था, शुरू में बहस करते थे, कुछ कुछ करते थे, तो बाबा कहते देह अभिमानी होंगे तो बहस भी करेंगे, देही अभिमानी तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती जो उनके आगे सामना करें या बात करें। तो बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी को कोई चोट मार न सके, भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे, इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम भी देना है कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे, इसलिए क्या करना है कि देही अभिमानी बनना है, सबको पैगाम भी देना है। भगवानों वाच्य मन मना भ्रम, कौन सा भगवान, अब भगवानों वाच्य हमेशा बाबा कहते थे लिखो नीचे शिव भगवानों वाच्य, फिर बाबा हमेशा जब चित्रों में करेक्शन कराते थे पहले भगवानों वाच्य लिखते थे, फिर बाबा कहते पूछो पूछेंगे कौन सा भगवान तो नीचे लिखो शिव भगवानों वाच्य, कौन सा भगवान, ये भी तुम बच्चों को समझाना है। बस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी। कौन सी बात? गीता का भगवान। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवानोवाच, इसलिए बाबा ने करेक्ट कराया था, लिखो शिव भगवानोवाच। जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बराबर है, परंतु जब तुम्हारे मौखिक समझे तब कहे कि बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। श्री कृष्ण थोड़ी कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकते। अब श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा है, उसको तो देखते ही सब पहचान लेंगे। छोटे बच्चे को भी श्री कृष्ण बना दो ना, तो उसको श्री कृष्ण करके उसी रूप में देखते हैं। तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो ऐसा कह नहीं सकता, कि श्री कृष्ण थोड़ी कहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसे भी तो नहीं कि श्री कृष्ण के तन में भगवान कहते हैं, नहीं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, वहाँ कैसे भगवान आएंगे। भगवान तो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखवाते जाओ, पहले बाबा के तुमको समझाओ, समझ भी जाते थे, फिर बाबा के तुमको समझाते जाएंगे तब बुद्धि में आएगा, क्योंकि श्री कृष्ण को तो सब पहचान लेंगे ना। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखवाते जाओ, लिखा है तो खुद भी लिखेंगे। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए थी। बाबा कहते थे पहले उनसे लिखवाओ, ओपिनियन लिखवाओ, प्रदर्शनी में ओपिनियन लिखवाओ, फिर गीता के भगवान का उनसे लिखवाओ, फिर जो भी उनकी लिखा है तो उसके एक बहुत बड़ी किताब, चौपड़ी मिस किताब, तो एक बहुत बड़ी किताब बना दो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत होगी। जब देखेंगे ये तो इतने सबने ऐसा लिखा है तो खुद भी लिखेंगे, फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी। गीता का भगवान कौन, ऊपर में भी लिखा हुआ हो ऊंचे से ऊंचा बाप ही है। श्री कृष्ण तो ऊंच से ऊंच है नहीं, भगवान ऊंचा है, सबसे ऊंचा जो शिव बाबा है, तो वो शिव बाबा से ऊंचा नहीं है ना। ये वह कह ना सके कि माम एकम याद करो, ब्रह्मा से भी ऊंचे से ऊंचा भगवान है। मुख्य बात ही ये है जिसमें सबका दिवाला निकल जाएगा। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते हैं यहाँ बैठना है, नहीं। फिर बाबा क्या बता रहे, कई आते थे बस यहीं बैठ जाए, अभी भी कई आते बस हम यहाँ रह जाए। बाबा कहते नहीं, बाबा का ज्ञान सुनो, जाओ औरों को सुनाओ। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि यहाँ बैठना है, नहीं। सतगुरु को अपना बनाए, फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी, शुरू में भट्टी बननी थी, कितने आए वो सब रह गए। बाद में थोड़ी ऐसा कि जो आता जाए रहता रहे, ये तो ज्ञान है, तो भट्टी बननी थी तब भाग करके आए थे। तो बाबा कहते हैं शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी, शास्त्रों में तो भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भट्टी होती है एक ईंटों की, पहले जमाने में होता था ना, आज के टाइम पर भी कहीं होता होगा, तो ईंटे को पकाते, बहुत बड़ी आग जलाते और गोल गोल बना के उसमें ईंटे रखते थे और आग लगाते तो ईंटे पकती, उसको भट्टी कहते थे। तो बाबा कहते थे भट्टी होती ईंटों की, उनमें से कोई पक्की कोई कच्ची, कोई खंजर निकलती है, कोई कच्ची निकली कोई पक्की निकली, कोई टूटी खंजर में टूटी फूटी कोई खंजर निकलती है। यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी ठिकर भीतर है, पुरानी चीज का मान बहुत है। शिव बाबा और देवताओं का भी मान है, खुदाई करते रहते हैं आजकल तो, कहाँ कहाँ खुदाई करते हैं, कहाँ पर शिवलिंग निकलता है, कहाँ पर देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां निकलती हैं, तो बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि शिव बाबा और देवताओं का बहुत मान है। आजकल तो बहुत जगह से कहाँ शिवलिंग निकल रहा है, कहाँ पर देवताओं की मूर्तियां निकल रही है। सचमुच में तो मान की बात ही नहीं, वहां थोड़ी पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं। आजकल तो खुदाई करते रहते हैं, यहां पर कुछ निकलेगा, कहीं पर खुदाई करते कुछ निकल जाता है, कहीं पर नहीं भी निकलता है, कहीं पर टूटा फूटा भी कुछ निकल आता है, शिवलिंग निकल आता है तो बोलते यहां शिवालय था। तो ऐसे खुदाई करते ही रहते ना, वहां तो जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते वहां थोड़ी पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं, वहां तो पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की दरकार ही नहीं पड़ती। तुमको खोदना करना ही नहीं पड़ता, ये खोदो ये निकलेगा वो निकलेगा, सब चीज ऑटोमेटिकली है। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे, मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है, समझते कुछ नीचे। अभी भी कहीं ना कहीं पर कोई काम करने के लिए खुदाई करते हैं, कुछ निकल आता है, फिर उसको खुदाई करते जाते गहराई में जाते जाते कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निकलता रहता है। तो बाबा कहते हैं द्वापर में तुमको खोदना नहीं पड़ता, द्वापर की बात खोदना शुरू करते हैं, मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है, समझते हैं कुछ नीचे हैं। सचिव में तो तुमको कोई परवाह ही नहीं है कि हम खुदाई करें कोई चीज ढूंढे, वहां तो सोना ही सोना होता है, ईंटें भी सोने की होती हैं। कलह पहले जो हुआ है वो मूल है, वही साक्षात्कार होता है, आत्माओं को बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नोंद है। ये भी द्वापर से शुरू होता है, द्वापर में आत्माओं को बुलाना, खाना खिलाना। आजकल तो कलयुग में सब कुछ होता ही नहीं है, तो बाबा कहते भी ड्रामा में नोंद है, पार्ट है, ये भी ड्रामा में नोंद है, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बजता है, फिर गुम हो जाता है। ये पढ़ाई है भक्ति मार्ग में, तो अनेक चित्र हैं, तुम्हारे ये चित्र सब अर्थ सहित है। जो भी चित्र बनाए उसके अंदर रहस्य है, उसके अंदर पूरा ज्ञान समाया हुआ। बाहर के कई चित्र होते हैं उसमें रहस्य नहीं होता, केवल ऐसे कोई डेकोरेशन के लिए बना देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं, तुम्हारे ये सब चित्र अर्थ सहित हैं, अर्थ बिगड़ कोई चित्र नहीं। जब तक तुम क्यों समझाओ तब तक कोई समझ ना सके, जब तक तुम उनको समझाओ नहीं तब तक कोई समझ ना सके। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक ही बाप है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है, तुम ही ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई आदि कुछ भी नहीं, राजधानी थी अब नहीं है, देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता। बाबा ने गीता ज्ञान सुनाया, ब्राह्मण कुल बना, ईश्वर कुल बना, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल बनता है, बाकी और कोई हो ना सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है, पीछे दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते। शास्त्रों में बातें लिखी है ना, बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आता है। तो बाबा कहते ये ऐसे तो हो नहीं सकता है ना। तो बाबा कहते हैं आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है, पीछे दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते है ना, इस सृष्टि झाड़ का पहला पत्ता कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए बाबा कहते पहला नंबर श्री कृष्ण तो आते है ना, बाकी सागर की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है, खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। अब बाबा कहते खुशी किनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे और पढ़ाएंगे। और जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पांच वेदक ऑनर होते। दो बातें, अच्छी रीति पढ़ने वालों को खुशी होगी और पांच वेद ऑनर होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पांच वेद ऑनर होते हैं। अगर कोई द्वेष से लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वो याद आता रहे। दिल में किसी का किसी के साथ होगा तो बाबा कितने बैठे होंगे बाबा के सामने पढ़ाई पढ़ रहे हैं। लौकिक में भी ऐसा होता, स्टूडेंट्स होते हैं कहाँ कहाँ बुद्धि लगी होती है, पढ़ते टाइम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, बुद्धि में कुछ नहीं बैठता और बुद्धि वहां पर लगी रहती है। जिसे बाबा कहते हैं अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वह याद आता रहेगा, बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती। शुरू में पढ़ाई का, लौकिक दुनिया में भी पढ़ाई का बहुत महत्व, ब्रह्मचर्य का भी बहुत महत्व होता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है कि एक बाप के सिवाय, तो बाबा कहते यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है कि एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आती रहती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते नहीं है। बाबा के टाइम पर होता था, साकार में बाबा के टाइम मुरली चल रही और बाबा देखते थे कि किसकी बुद्धि कहाँ जा रही, किसकी बुद्धि कहाँ जा रही। जो सुनने वाला होगा उसका इतना नशा होता था, वो बाबा को देखते और बहुत प्यार से सुनते, और जिनकी बुद्धि इधर होगी सुन भी रहा है हाँ हाँ भी कर रहा है लेकिन उसके चेहरे से मालूम पड़ जाता था। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भी बैठे हुए सुनते हुए भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसा होता है, सत्संग में बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी। ये तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे यहाँ बैठे हुए भी सुनते नहीं, बाबा को पता रहता है कौन क्या है किसकी अवस्था क्या है, फिर बाबा को कहना पड़ता है। कोई तो यहाँ बैठे हुए जैसे कि सुनते नहीं, कई बच्चों को तो बहुत खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। बाबा के सामने जब बैठते थे तो बाबा हमेशा कहते सब बच्चों को अलर्ट होके बैठना, तो सबको अलर्ट होके बैठते थे। फिर भी किसकी बुद्धि जाती थी तो बाबा का ध्यान चला जाता था, फिर जैसे बाबा ने देखा वो फटाफट अलर्ट हो जाता था। तो बाबा कहते हैं कई बच्चों को खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे, बुद्धि बाप के साथ रहेगी, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है, कितना धन मिलता है अविनाशी धन, यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा योग ही सेवकी के लिए ढाल है। पहले जमाने में लड़ाई करते थे ढाल रखते थे ना, तो बाबा कहते हैं योग ही सेवकी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। वरदान विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भाव। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भाव। सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा है। पहला कि हम विशेष आत्मा है, दूसरा विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषता दिखलाने वाले हैं। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो, विशेष आत्मा, ये विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। कौन कौन सा? बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से सहज स्व परिवर्तक, स्व विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, विघ्नों से घबराने की बजाय पेपर समझकर उसे पार करो। विघ्नों से घबराने की बजाय पेपर समझकर उसे पार करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो। अपनी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। अच्छा, ओम शांति। पेपर नहीं दिया गया। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और आज डबल विदेशी भाई बहनों का कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि इस ग्रुप के भाई बहने अभी जा रहे हैं और नया ग्रुप अभी अगला जो 1 फरवरी का ग्रुप है उसमें काफी ज्यादा संख्या में डबल विदेशी भाई बहने आ रहे हैं। खास करके हमारी विदेश में जितनी सीनियर्स बहने हैं, RCCs हैं, NCCs हैं और वो भी, और सभी विदेश के जो सभी सेंटर्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो सब के सब आ रहे हैं। अगला ग्रुप काफी बड़ा है और हमारी सभी दीदियां, मोहिनी दीदी, जयंती बहन और भारत की जितनी दीदियां विदेश में, वो सब की सब अगले ग्रुप में आ रही हैं और आप सबसे बीच बीच में मिलते रहेंगे। और बाबा तो बहुत प्यार से उनको स्वागत भी करते हैं और हम सबको भी उनका स्वागत करना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। जो एक रात के लिए शांतिवन से हाथ खड़ा करें, जो शांतिवन से आए हैं, ये भी अच्छा है। स्टाइल और क्या होगा, नाचने का बहुत फेमस रहते हैं, विदेश विदेश के अंदर भी इनकी ट्यून और इनका स्टाइल बहुत ही अच्छा होता है। तो आज